उपन्यास का अंतिम खंड मल्लिका। मद्र में वर्णाश्रम धर्म की स्थापना होकर गणराज्य और सागल नगरी से हीन वर्ग की उच्छृंखला दूर हो गई। द्विजकुल वर्ग की मर्यादा पुनः स्थापित होने से देवी मल्लिका को भी संतोष हुआ। देवी ने अपने चतुस्साल में पुनः परिपाटी से कला के अनुष्ठान का आयोजन किया। कला का अनुष्ठान और परिपाटी स्थापित होने पर भी कला की वह सजीवता न आ सकी जो स्वयं उनके यवन काल में और दिव्या मादुलिका शिष्यों के सहयोग से थी। देवी मल्लिका स्वयं यह अभाव अनुभव करती। कला के प्रति आदर अवश्य था परंतु आकर्षण नहीं। कला के विषय थे परंतु उनकी ग्राहता नहीं। सुंदर पिजरा था परंतु सारिका निष्प्रभ थी। अनुभवी संगीताचार्य मारुत आपित और लोमक अपने विद्ध कंठों से सड़च की शुद्ध लय उठाते। वृद्ध नट उदम्बुर अपने अस्थिपिंजर मात्र शरीर से अनेक कठिन दुसाध्य मुद्राओं का प्रदर्शन कर भावबोधन करते। उन्हीं की भांति मर्मज्ञ वृद्धा नर्त की प्रथा थी। ऐसी कला का रस पाने के लिए ज्ञान प्रयत्न और संस्कार की आवश्यकता थी। जैसे समाधि और ध्यान का आनंद केवल अभ्यास से पाया जा सकता है, वह कला रूप और स्वर की सम्मोहक शक्ति से विगत कला की शुद्ध आत्मा थी। परंतु साधारण जन की दृष्टि में कला का निर्जीव उपचार मात्र। जन के लिए उस कला की अनुभूति उतनी ही दुसाध्य थी जैसे शरीर के बंधन से मुक्त आत्मा का ज्ञान। रसिक समाज आदर तो मल्लिका का करता परंतु संतोष ढूंढता था वशमित्रा और कुसुम सेना के यौवन से किलकिलाते चतुस्सालों में। दूर देश से ज्ञानी अभी विमर्श के लिए देवी मल्लिका की ही कलापीठ में पधारते थे। पृथ्वीसेन के पराभव के पश्चात मादुलिका पश्चाताप से मल्लिका की सेवा में क्षमा याचना के लिए आई। मल्लिका ने उसे पुनः स्वीकार न किया। जिसे कला की अपेक्षा विलास सुख ने आकर्षित किया उसके हाथ में कला शुद्ध और सम्मानित नहीं रह सकती। मादुलिका से विरक्त होकर देवी का मन और भी व्यग्र हो उठा। धर्म की पुनः स्थापित व्यवस्था में कला की पीठ क्या यूं ही उपेक्षित रह जाएगी? संपूर्ण जीवन के प्रयत्न और साधना से कला के लिए जिस सम्मान और शक्ति के अधिकार की स्थापना वे कर पाती थी वह क्या उनके शरीर के साथ ही लुप्त हो जाएगा? जनपद कल्याणी का आसन अनधिकारी और अपात्र से अपमानित होगा। मल्लिका के लिए पीड़ा और नेत्रों के सम्मुख सर्वनाश होने के समान थी। देवी मल्लिका को अपने पराभव से मोह न था। वह वैभव उनके विश्वास में कला के अधिष्ठात्री का सम्मान मात्र था। वह स्वयं कला का प्रतिरूप थी इसलिए सम्मान की अधिकारी थी। मल्लिका ने धन और द्रव्य का अर्जन न किया था, अर्जन किया था कला की सफलता के यश और कीर्ति का। द्रव्य उस यश और कीर्ति का छाया रूप था। देवी ने यौवन में केवल संतोष अपनी कला के उत्तराधिकारी की आशा में धारण की थी। रूपवती कन्या का वरदान पाकर उन्हें अपना शरीर देवी सरस्वती को अर्पण कर कला में शैथिल्य की आशंका से पुनः गर्भ न धारण करने की जो प्रतिज्ञा ली थी, निष्ठुर देव ने उनकी संतान छीन ली। परंतु देवी ने अपनी प्रतिज्ञा भंग न की। देव ने भक्त की उपेक्षा की परंतु भक्त की निष्ठा दृढ़ रही। देवी मल्लिका को देव के इस विधान में कुछ भी विपरीत न जान पड़ा। उन्होंने विचारा सरस्वती का उत्तराधिकार गर्भ में नहीं मुख से होता है, वैसे ही देव का उनका उत्तराधिकार गर्भ की संतान से नहीं आत्मा की संतान गोपा तक्षशिला में सुलेखा मगध और रत्नप्रभा मथुरा में उनकी कीर्ति ध्वजा फहरा रही थी। दूर देशव्यापी कीर्ति से आकर्षित होकर कला के उद्गम तीर्थ सांगल की यात्रा करने वाले अब यहाँ क्या पाएंगे? यह सोच देवी मल्लिका का शरीर वेदना से सिहर उठता। मादुलिका से उन्हें आशा की थी परंतु वह अपात्र निकली। देवी मल्लिका ने वीण पाणी देवी सरस्वती की कृपा में निष्ठा दृढ़ कर पुनः अपना उत्तराधिकारी पाने का निश्चय किया। उन्होंने निश्चय किया कि उत्तराधिकारी की खोज में वे जम्मू द्वीप के सुदूर प्रदेशों और जनपदों की यात्रा करेंगी। दूर देश से आए सार्थवाहों पर्यटकों और यात्रियों से वे अनेक प्रदेशों की कला साधिकाओं के विषय में जिज्ञासा करती रहती थीं। तक्षशिला मालव मगध मथुरापुरी और दक्षिणापथ के संबंध में संवाद से जितना भी ज्ञातव था उन्होंने जान लिया था। सबसे अधिक कृति उन्होंने रत्नप्रभा के शिष्या अंशुमाला को ही सुनी थी। देवी मल्लिका स्मरण करती रत्नप्रभा में प्रतिभा और निष्ठा दोनों ही थी, परंतु चार वर्ष में उसकी कृति विशेष उज्ज्वल हो उठी है। कारण है अंशुमाला जैसी शिष्या प्राप्त करने का सौभाग्य। ऐसी शिष्या पाने वाले गुरु से अधिक भाग्यशाली कौन होगा? ऐसी शिष्या जो गुरु से प्राप्त ज्ञान के स्फुलिंग को ज्योतिर्मय ज्वाला का रूप दे सके। मगध से लौटते समय आचार्य रुद्रधीर के मथुरापुरी में निवास करने के अनुमान से मल्लिका ने उनसे अंशमाला के विषय में जानना चाहा। आचार्य ने उस विषय में अधिक रुचि न दिखाई। इस विषय में आचार्य के मौन से मल्लिका ने अनुमान किया कि नीरस शुक्र प्रकृति आचार्य का कला के विषय में प्रवेश ही कितना है। जो भी हो, वृद्धावस्था में स्वयं कष्ट सहकर वह अपने उत्तराधिकारी की खोज करेगी। वृद्धावस्था में पुण्यात तीर्थाटन के ब्यास से देवी मल्लिका अपने आसन के उत्तराधिकारी की खोज में अनेक तीर्थों, प्रदेशों, जनपदों और नगरों की यात्रा करती, अनेक स्थानों के कलापीठों को देखती सूरसेन की ओर चली। ज्यों ज्यों वे मथुरापुरी के समीप पहुँच रही थी, अंशमाला की कीर्ति अधिक प्रखर हो रही थी। देवी मल्लिका को विश्वास था नटराज के धाम में उनकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। मद की जनपद कल्याणी, कला की अधिष्ठात्री, सांगल की राजनर्तकी देवी मल्लिका के आगमन के से समाचार से मथुरापुरी आहद और उत्साह से विलोड़ित हो गया। पूर्वाभिमुख यमुना की प्रतिद्वंदिता में जनप्रवाह नगर के पश्चिम द्वार की ओर बह चला। देवी रत्न प्रभा के प्रसाद से नगर के पश्चिम द्वार तक राजपथ कादली तोड़ों, कलश स्तंभों, पताकाओं, आम जमुना के पत्तों के वंदनवारों और पुष्पमालाओं से छा गया। भवनों, अट्टालिकाओं और पर्णों की भित्तियां, द्वार और स्तंभ रंगीन कौशीय पटों में छिप गए। राजपथ धन्य और यौ की खिलों और लेखनों से बिछा दिया गया। पथ का वातावरण अगर धूप, लोबान और चंदन के धूम्र से धूमिल और सुवासित हो गया। अट्टालिकाओं के गवाक्ष और आलिंद दर्शन समूह के भार से चरमनाने लगे। स्थान स्थान में वीणाओं, पिपणियों, काश्यतालों, मुरजों और मृदंगों के स्वर से उठने के आकाश मुखरित हो गया। देवी रत्न प्रभा, अंशमाला और दूसरी शिष्याओं, राजपुरुषों, सामंतों और श्रेष्ठियों सहित गुरुदेवी की अभ्यर्थना के लिए नगर द्वार पर उपस्थित थीं। धूलि के मेघों में मल्लिका के रथ की मगर चिन्हधारी पताका दिखाई देने पर स्वागत के वाद्य और शंख बज उठे। नभ जन के जयघोष से कंपित हो गया। रत्न प्रभा ने देवी मल्लिका के रथ से उतरने पर स्वर्ण के आधार पर रखे 100 घृत दीपों से गुरु देवी की आरती उतारी और रत्नों से भरा थाल भेंट किया। मुस्कान से रत्न प्रभा की भेंट अस्वीकार कर देवी ने उत्तर दिया, पुत्री, कला का भक्त अन्य स्थान से प्रकाश पाकर धृतमान होने वाले रत्नों की इच्छा नहीं करता। वह स्वयं आभाव उत्पन्न करने वाले रत्नों का आदर करता है। आज मैं गुरुदक्षिणा में अथवा भिक्षा में वही रत्न मांगने आई हूँ। रत्न प्रभा की गिरवा विचार से झुक गई। उपस्थित विशिष्ट समाज स्तंभित रह गया। बद्ध पाणि रत्न प्रभा ने मस्तक झुकाकर विनय की, माता, शिष्या जो कुछ है, शिष्या का जो कुछ है, वह सब भगवती का दान है, जो आज्ञा हो। जानू पृथ्वी पर टिक कर रत्न प्रभा ने सिर मल्लिका के चरणों पर रख दिया। मल्लिका ने मुक्ता से गुथे रत्न प्रभा के केसों पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया, सरस्वती की पुत्री, तुम्हारे ज्ञान, यश और वैभव का सौभाग्य अचल रहे। तुम्हारी गुरु अपने शिष्या की शिष्या अंशमाला की भिक्षा मांगने आई है। मल्लिका के शब्द सुनकर रत्न प्रभा उठी। अपने पीछे खड़ी अंशमाला को शिशु की भांति बाहों में लेकर मल्लिका के चरणों में बैठाकर हर्षतिरेक से गदगद स्वर में बोली, माता, यह भी तुम्हारी ही है। कला का यह वरदान देने का सामर्थ्य साक्षात सरस्वती के अतिरिक्त और किसमें है। चारों ओर मुक्त कंठों से जय जय की पुकार, जय वाद्य और तथा शंखनाद का तुमुल स्वर उठने लगा। उस कोलाहल के मध्य अपने चरणों से अंशमाला का मस्तक उठाकर मल्लिका ने चीरकाल में पूर्ण अपनी साधना का मुख देखा। देवी मल्लिका के नेत्र विस्मय से विस्मित रह गए, सांस रुकने लगा और सहसा नेत्रों से जलधारा बह उठी। अंशमाला को अत्यंत गूढ़ आलिंगन में हृदय पर समेट कर मल्लिका क्रंदन कर उठी, दिव्या दिव्या, मेरी पुत्री, मेरी आत्मा की संतान। रत्न प्रभा के लिए अंशमाला का वियोग सर्वस्व त्याग ही था, परंतु जैसे कन्या की माता पुत्री के पति गृह लिए विदा करते समय मर्मांतक वियोग को उत्सव का रूप देती है, उसी प्रकार रत्न प्रभा ने अपनी सखी, भगनी, पुत्री अंशमाला को उसके उज्ज्वल भविष्य के विश्वास से देवी मल्लिका के करों में समर्पण कर आयोजन किया। नेत्रों से जल बहाती वह उसे नगर द्वार तक विदा देने गई। विराट समाज पथ के दोनों ओर एकत्र था। अंशु के वियोग से संपूर्ण मथुरापुरी दुखित थी, परंतु जम्मूदीप मात्र में अग्रगण्य कला के अधिष्ठात्री देवी मल्लिका को संतुष्ट कर पाने का गर्व ही उन्हें था। रसिक भक्तों और अनुरागियों द्वारा भेंट किए गए रत्न भूषणों से अंशु का रथ भर गया। रत्न प्रभा मल्लिका के वेगवान रथों से उड़ती दूली के मेघों से अस्पष्ट होती जाती मल्लिका के रथ के मकर ध्वजा को नेत्रों पर हाथ रखे देखती रही, मानो मार्ग पर दूर होकर प्रतिक्षण क्षीण होते जाते उस बिंदु में ही उसके प्राण समाये थे। दृष्टि के असमर्थ हो जाने से, उस बिंदु के अदृश्य हो जाने पर यह शिष्या मुक्तावली के कंधों का सहारा लिए निर्जीव जड़ के समान रह गई। समीप ही उपस्थित परम भट्टारक उपारिक रवि शर्मा ने अपने हाथ के करुण स्पर्श से उसे सचेत कर स्वयं रथ पर बिठाया। रत्न प्रभा उत्तरी में मुख छिपाए अपने प्रसाद की ओर लौट गई।